सो हम सब लोग इस साप्ताहिक कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, है ना। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, मुझे उम्मीद है आपको भी मिले होंगे, जो कि कई लोग ये बोलते हैं कि भगवान को जाना ही नहीं जा सकता, है ना। या कई लोग बोलते हैं कि भगवान को वही जान सकता है जिनको जिन पर भगवान कृपा करेंगे। तो जब भगवान हम पर कृपा करेंगे तो हम जान लेंगे उनको। तो ये साउंड में इको है, सो मतलब ये यार कैसे इसका मुंह तरफ घुमा दो यार। तो सो जब भगवान कृपा करेंगे तो कर लेंगे, अभी तो मतलब भगवान की यही इच्छा है कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहें। सो सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। भगवान चाहते हैं कि हम इसी तरह से जैसे हम अपने घर परिवार में, अपने व्यवसाय में, बिजनेस में, अपने नौकरी में जैसे हम मस्त हैं वैसे मस्त रहें। हाँ, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, समय आएगा, जब समय आएगा तब देखेंगे। ओह, यू ब्रॉट माला, ओके। सो लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भगवान को जाना ही नहीं जा सकता, जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान को जाना ही नहीं जा सकता, तो उनसे हम ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर भगवान को जाना ही नहीं जा सकता तो भगवान ने शास्त्र क्यों दिए? भगवान ने अपने भक्तों को क्यों भेजा और लगातार भेज रहे हैं इस धरती पर? भगवान ने शास्त्र दिए हैं और भगवान ने उन शास्त्रों में अपने बारे में जानकारी दी है। भगवद गीता में कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये शक्तियां हैं। भगवान एकदम क्लियरली स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं भगवान, क्यों भगवान ने प्रेरणा दी व्यास देव जी को नारद जी के माध्यम से कि आप श्रीमद् भागवतम लिखो, आप पुराण लिखो, क्यों भगवान ने प्रेरणा दी चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए, और क्यों उन्होंने उसके अंदर अपने बारे में और भक्तों के बारे में जानकारी दी। भगवान ने जानकारी इसलिए दी क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं कि उनको जाना जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं जाना जा सकता, भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन उनको जानने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, है ना। तो उस प्रक्रिया का वर्णन भगवान भगवत गीता में कर रहे हैं, जहाँ भगवान सातवें भगवत गीता के सातवें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन, पहले भी काफी वार्तालाप हो चुका है भगवान का और कृष्ण और अर्जुन का बहुत संवाद आपस में हो चुका है। और सातवें अध्याय के बिल्कुल शुरू में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मैया सक्त मना पार्था योगम निंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु, कि यथा ज्ञास्यसि जैसे जाना जा सकता है, भगवान को कैसे जाना जा सकता है वो मुझसे सुनो। तो क्या कुछ थोड़ा बहुत समझने को मिलेगा? क्या कुछ डाउट रह जाएगा? क्या कुछ शंका रह जाएगी? असंशयम कुछ डाउट नहीं रह जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लोगे। तो क्या कुछ छूट जाएगा? समग्रम पूरी तरह से जान लोगे। और जब भगवान कहते हैं कि पूरी तरह से जान लोगे, तो उसमें जब हम भगवान को पूरी तरह से जान लेंगे तो हम ये भी जान लेंगे कि भगवान को पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता। भगवान अनंत है और भगवान हर क्षण इतनी लीलाएं करते हैं कि अनंत शेष अपने हजारों मुखों से, अनंत काल से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। तो जब भगवान कह रहे हैं कि समग्रम पूरी तरह से जान लोगे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जान लेना कि भगवान को क्या अच्छा लगता है और भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता। आखिर भगवान को हम अगर जानकर हमें क्या हासिल होगा, और भगवान को जानने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम भगवान को जाने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, लेकिन भगवद गीता में कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सारे रास्ते एक तरफ नहीं जा रहे, हर रास्ता अलग जा रहा है। बॉम्बे जाने का रास्ता अलग है, कलकत्ता जाने का रास्ता अलग है, आपस में कुछ मेल नहीं खा रहे। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप देवों की उपासना करोगे तो देवी देवताओं के पास जाओगे, अगर आप भूतों की उपासना करोगे, लोग मजार की मजार पे अगरबत्तियां वगैरह जलाते हैं ना, नहीं तो कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम भूतों की उपासना करोगे, भूत प्रेतों की, तो भूत प्रेतों के पास जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी उपासना करोगे, मेरी उपासना करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, मेरे पास आ जाओगे। तो हम यहाँ पर इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर हम भगवान के पास क्यों जाएं, और अगर भगवत गीता में सब कुछ लिखा है, अगर भागवतम चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में भगवान के बारे में स्पष्ट लिखा है, तो लोग समझ क्यों नहीं रहे? नहीं, जब सब भगवान ने बता ही दिया, भगवान ने अपने बारे में हर बात बिल्कुल विस्तार से बता दी। भगवान कह रहे हैं देखो मेरा श्याम सुंदर रूप सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर तुम मेरे द्विभुज श्याम सुंदर रूप की अगर उपासना नहीं कर सकते तो मेरे विश्व रूप की उपासना करो। ये जान लो इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं हूं। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु मेरी शक्ति के बिना, मेरी इच्छा के बिना स्थापित नहीं रह सकती, स्थिर नहीं रह सकती। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें भगवान का स्मरण नहीं कराए, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। वास्तव में भगवान को, लोग कहते हैं भगवान को याद करना बड़ा मुश्किल है, एक्चुअली में भगवान को भूलना बड़ा मुश्किल है। कण कण में तो विराजमान है भगवान। कौन व्यक्ति है जो पानी के बिना रह सकता है? अब भगवान कह रहे हैं जो जल में, जो जल का जो टेस्ट है, जो जल का स्वाद है, जो जल के अंदर प्यास बुझाने की शक्ति है, वो मैं हूं। ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा, जो सूर्य है भगवान की आंख है, चंद्रमा भगवान की आंख है, हर वस्तु, कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो हमें भगवान की याद नहीं दिलाए। हम अगर कोई फूल हमें अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, वो इसलिए खूबसूरत है क्योंकि भगवान ने गढ़ा है, वो भगवान ने वो चित्र बनाया है, इसलिए सुंदर है। कोई किसी, आप फैक्ट्री में किसी लैब के अंदर वो ऐसा फूल बना ही नहीं सकते। अच्छा फूल तो क्या, खराब फूल भी नहीं बना सकते। लोग बोलेंगे चलो कोई सा फूल तो बनाया, ऐसा भी फूल नहीं बना सकते। हर वस्तु जो बन रही है वो भगवान की निजी सृजन शक्ति पर आधारित है, उसका परिणाम है। फिर भी ये जानते बूझते हुए भी लोग क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से भगवान से ईर्ष्या करते हैं। सिर्फ चार तरह के लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं जान सकते। हाँ, वो चार तरह के लोग, उनका जो वर्णन है भगवान कृष्ण भगवद गीता के सातवें अध्याय के 15वें श्लोक में दे रहे हैं। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया हत मायापहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितम। चार तरह के लोग हैं जो मुझे कभी समझ नहीं सकते, वो कितना ही प्रयास कर ले मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे, है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्कृत के विद्वान हुए जिनको पूरा व्याकरण आता था, जो हर तरफ से पूरी तरह से, मतलब वो अलग अलग अर्थ निकालने में निपुण है वो लोग, लेकिन क्या वो भगवान को समझ पाए? और भगवान को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि जो मूर्ख हैं, जिनको जानकारी नहीं है, मूर्ख का मतलब अनपढ़ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मूर्ख का मतलब अनपढ़ है। अनपढ़ व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन की हर वस्तु में, हर घटना में भगवान का हाथ नहीं देख पा रहा, वो मूर्ख है। हर वस्तु में भगवान का हाथ है, हर घटना में भगवान का हाथ है। भगवान कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता च, मैं हर चीज को देख रहा हूं और हर चीज की अनुमति दे रहा हूं, मेरी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारे में देखने की शक्ति नहीं है। वो शक्ति कहां से आएगी? वो शक्ति आएगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम भगवान से प्रेम करने का प्रयास करेंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत हैं वो देख सकते हैं भगवान को हर जगह। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी आंख में प्रेम का सुरमा लगाया हुआ है। प्रेमांजन अंजन लगाया हुआ है, सुरमा लगाया हुआ है। अगर जब तक हम भक्ति के दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक भगवान को समझ पाना और भगवान के कार्यों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। पूरा हिंदुस्तान, जो लोग अपने आप को भक्त भी मानते हैं, वो यही चर्चा में लगे हुए हैं कि भगवान राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग कर दिया। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे त्याग कर सकते हैं भगवान राम सीता का। वो भगवान राम को एक महापुरुष तक समझ लेते हैं, वो उनको भगवान नहीं समझ रहे। वो सीता माता को एक बहुत सती स्त्री के रूप में सोचते हैं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो सीता देवी है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। जिस प्रकार भगवान का एक नाम है अधोक्षज, अगोचर। अधोक्षज का मतलब है कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से ना भगवान को देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। तो जिस प्रकार भगवान अधोक्षज है, भगवान की शक्तियां भी अधोक्षज है। भगवान की शक्तियां भी भौतिक लोगों की पहुंच से, पकड़ से बहुत दूर है। और जो रावण है, रावण भौतिक इंद्रियों का प्रतीक है, स्वरूप है। भौतिक व्यक्ति कैसा होता है? किस प्रकार एक भौतिक व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में, अपने लाभ के बारे में हमेशा सोचता रहता है? रावण उसका प्रतीक है, रावण उसका आदर्श है। रावण से ज्यादा कोई भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोच सकता, है ना। और क्या रावण अनपढ़ था? रावण वेदों का ज्ञाता था, उसको सब वेदों की जानकारी थी। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेदेषु दुर्लभम, वेद पढ़ने से भगवान नहीं समझ में आएंगे। अगर हम सोचें कि हम सिर्फ वेद पढ़ लें, हम वेद पढ़ने से भगवान को समझ लेंगे, नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हम वेदों को, शास्त्रों को पढ़ने में अपनी भौतिक इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा, प्लीज ये थोड़ी देर बंद कर दो भैया अपनी कंस्ट्रक्शन, 10 मिनट के लिए रोक दो, उसके बाद कर लेना। क्यों हम समझ नहीं सकते वेदों को पढ़ने पर भी? क्योंकि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से, भौतिक मन से वेद पढ़ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम शास्त्रों को पढ़ें, जब तक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, हम कभी भगवान को समझ नहीं सकते। तो भगवान को समझने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। भगवान को समझने के लिए पहली चीज आवश्यक है कि हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज आप हमें समझने की शक्ति प्रदान करो, है ना। अगर हम केवल अपने प्रयास से समझने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं समझ सकते हम। जरासंध ने भगवान को पकड़ने की बहुत कोशिश की, कालयवन ने भगवान को पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ पाया वो। भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, हमें ये बात अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट करनी होगी, है ना। तो जब हम शास्त्र पढ़ें, जब हम भगवद गीता पढ़ें, जब हम लेक्चर सुनें, जब हम किसी से प्रवचन भी सुने, तो हमें बहुत ही विनीत भाव से पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अगर किसी चीज से प्रभावित होते हैं, भगवान विनम्रता से, दीनता से प्रभावित होते हैं। अगर हम सोचें हम भगवान को धन दौलत सुंदरता से प्रभावित करें, हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान स्वयं मदन मोहन है। भगवान इतने सुंदर है कि कामदेव को मोहित कर लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान से सुंदरता के मामले में मुकाबला कर ले। अगर कोई धन दौलत से भगवान को इम्प्रेस करना चाहे, भगवान इम्प्रेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानव। तो क्या एक ही लक्ष्मी है? करोड़ों लक्ष्मी है, गिनती नहीं है, करोड़ों लक्ष्मी है। लक्ष्मी सहस्त्र शत, करोड़ों लक्ष्मी है, और सारी लक्ष्मियां क्या कर रही हैं? मिलके संभ्रम, बहुत ही आदर से भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो हम भगवान को किसी भी ऐसी वस्तु से प्रभावित नहीं कर सकते जो कि भौतिक है। भगवान को सिर्फ हम एक ही वस्तु से, एक ही गुण से प्रभावित कर सकते हैं, वो है दीनता, विनम्रता। तो आप बोलोगे कि विनम्रता कैसे दिखाएं? विनम्रता दिखाने का तरीका है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हम भगवान को प्रे करें कि हे कृष्णा, मैं बहुत ही क्षुद्र हूं, बहुत ही तुच्छ हूं, मैं तुच्छ हूं और मेरा दिमाग भी तुच्छ है, मैं आपको नहीं समझ सकता, लेकिन मैं आपको समझना चाहता हूं। ये उसी प्रकार है जैसे एक बौना व्यक्ति आकाश छूना चाहे। संभव नहीं है कि एक बौना व्यक्ति आकाश छू ले, लेकिन मुझे आपकी कृपा पर पूरा भरोसा है। मुझे ये भरोसा है कि अगर आप चाहेंगे, लंघते पंगुं गिरिं, अगर आप चाहेंगे तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पार कर सकता है, अगर आप चाहेंगे तो। और हम कैसे भगवान को, कैसे पता चलेगा कि हम दीन हैं? जब हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने की सर्वोत्तम विधि है भगवान के दिव्य नामों का जप करना। जब हम बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही सावधानी से हम भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं, तो ये जो भगवान के दिव्य नामों का जप है, ये वास्तव में एक प्रार्थना है जिसमें हम भगवान को प्रे कर रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरे प्रयास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुझ में वो शक्ति नहीं है, लेकिन आप बहुत ध्यान दो, आप प्लीज मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतना मुझे ऐसी मेरी चेतना को बना दीजिए कि मैं आपको समझ पाऊं। क्यों समझ पाए, क्यों हम भगवान को समझना चाहते हैं? हम भगवान को समझना चाहते हैं ताकि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर पाए। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने विशेषकर हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। आप लोगों के पास है लड्डू गोपाल? कितने लोगों के पास है? और वो लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को देवी देवताओं के चरणों में रख देते हैं, और देवी देवताओं की फोटो होती है इतनी बड़ी, और उनके पैरों में छोटे से लड्डू गोपाल रख देते हैं, और वो सोचते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक हैं, देखो हम कितने सारे देवी देवताओं की, कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। तो वो उपासना ठीक नहीं है, वो प्रयास आप कर रहे हो, आप अपनी तरफ से सोच रहे हो कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान से रहित है, हमें सही गलत का अंदाजा नहीं है। भगवान की भक्ति करना जितना महत्वपूर्ण है, उनकी अच्छे से भक्ति करना, ठीक तरह से विधि विधानों के अनुसार भक्ति करना उतना ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत ये है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, कि जैसे भगवान रखेंगे हम वैसे रहेंगे। सिद्धांत ये नहीं है कि हम जैसे भगवान को रखेंगे वो वैसे रहेंगे, ये उल्टा सिद्धांत है, है ना? हम भगवान को जैसे रखेंगे वो वैसे रहेंगे संभव नहीं है। अगर भगवान कण कण में विराजमान है तो भगवान लड्डू गोपाल के विग्रह में भी विराजमान है, लेकिन भगवान, ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि भगवान उस कण में, उस लड्डू गोपाल के विग्रह में अपने आप को प्रकट करें या नहीं करें। ऐसा नहीं है कि हमने भगवान के विग्रह या फोटो रख दी और हम उनकी उपासना कर रहे हैं तो सब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान की पूजा करने में, पूजा और सेवा एक बात होती है, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हम सेवा ठीक से नहीं करें तो सेवा अपराध भी लगते हैं, है ना? अगर हम भगवान के नाम जपते हैं तो अगर हम ठीक से नहीं जपें, अगर हम सावधानी से नहीं जपें तो नाम अपराध भी लगते हैं, है ना? तो आप बोलोगे कि आपने डरा दिया हमें, हम अच्छी भली भक्ति कर रहे थे, अच्छी भली हम पूजा कर रहे थे, अभी कल जाके वो पूजा बंद करें, कम से कम अपराध तो नहीं लगेंगे, नहीं है ना? तो कुछ चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भगवान का जो स्थान है वो सर्वोच्च और सर्वोत्तम होना चाहिए। और जिस प्रकार से एक स्त्री जो है अगर अपने पति के प्रति पूरी तरह से अगर वो समर्पित होगी तो उसको पतिव्रता स्त्री कहा जाता है, लेकिन अगर वो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं है, औरों के बारे में भी सोचती है, तो उसको वैश्या कहा जाता है ना। इसी प्रकार अगर हम भगवान पर एकांतिक रूप से पूरी तरह से समर्पित नहीं है तो हमारी जो भक्ति में निष्ठा की कमी है, और वो निष्ठा क्या है, वो निष्ठा ये बात है कि कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए, कि हम अगर भगवान की भक्ति कर लेंगे, अगर हम सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने से ही हमें अलग से देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने कृष्ण भक्ति की तो हमने शिवजी की उपासना कर ली, हमने दुर्गा देवी की उपासना भी कर ली, हमने ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया, हमने इंद्र सूर्य चंद्र वरुण सबको हमने संतुष्ट कर दिया। और भागवतम में एक श्लोक बताया गया है जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि जिस प्रकार हम कोई एक वृक्ष है, उसकी टहनियां है, पत्ती फूल फल इत्यादि हैं, हम पत्ती फूल फल की अलग से हम सेवा नहीं कर सकते। अगर हमें एक वृक्ष में अगर कोई एक फूल लगा हुआ है, हमें बहुत सुंदर लग रहा है, तो उस फूल को हम अगर अलग से पानी देंगे, फूल को अलग से खाद डालेंगे, तो क्या वो फूल बचा रह पाएगा? वो फूल नहीं बचा रह सकता, क्योंकि वो फूल में शक्ति नहीं है कि हम कि वो सीधे भोजन ग्रहण कर ले। फूल को भोजन के लिए, जो फूल है फल है, वो भोजन के लिए वृक्ष पर आश्रित है, और वृक्ष एक ही जगह से भोजन ले सकता है अपने पैरों द्वारा। और वृक्ष के पैर क्या है? उसकी जड़ है ना। इसलिए संस्कृत में वृक्ष को बोला जाता है पादप। पादप का मतलब है जो पैर से खा रहा है, जो पैर से भोजन ग्रहण करता है उसको पादप बोलते हैं, और जो मुंह से मल त्याग करता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा कोई जीव है जो मुंह से मल त्याग करे? है कोई? हाँ, चमगादड़ उल्टा लटका रहता है ना, हम लोग तो सीधे लटके हुए हैं। लटके हुए नहीं लटके हुए है ना? आप में से कोई है जो नहीं लटका हुआ सीधा? चमगादड़ उल्टा लटका रहता है। हाँ, तो हम जब भोजन करते हैं तो क्योंकि हम सीधे लटके हुए हैं तो भोजन नीचे की ओर जाता है, जो भी हम खाते हैं और पीते हैं, लेकिन चमगादड़ क्योंकि उल्टा लटका हुआ है। राहुल कुछ कहना चाहता है? हाँ बताओ। अगर हम चमगादड़, हम भी चमगादड़ बन सकते हैं। वो चमगादड़ हमारे जैसे ही था पहले, ऐसा नहीं है कि वो मतलब अनादिकाल से चमगादड़ ही बना हुआ है, वो ऐसा नहीं है। वो चमगादड़ क्यों बना? क्योंकि उसने भगवत गीता नहीं पढ़ी, उसको मौका मिला था भगवत गीता पढ़ने के लिए, लेकिन उसने भगवत गीता नहीं पढ़ी, इसलिए वो चमगादड़ बन गया। सो क्योंकि चमगादड़ उल्टा लटका रहता है, इसलिए वो जो भी खाता है वो बच के जो वेस्ट है, बचा कुचा जो है उसके मुंह के माध्यम से वो त्याग करता है ना। वेल, क्या अजीब सी जीव है चमगादड़। लेकिन हाँ, वो भी चमगादड़ ही है जो पान परा खाते हैं, पान परा खाते मुंह से थूकते रहते हैं। नहीं, सो अपने पैरों से खाना कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, है ना। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, देखो कितनी अद्भुत शक्ति है, पैरों से खा गया, मुझे भी चाहिए। तो बन जाओ पेड़। मनुष्य जीवन तो 50 साल 100 साल का है, पेड़ बन गए तो सैकड़ों साल हजारों साल खड़े रहेंगे और पैरों से खाते रहेंगे, है ना। चलो आप पैरों से खाते रहो, फाइन। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है पैरों से खाने के लिए। तो अगर हम कई लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है, इतने सारे दुख है यहां पर, क्यों बना दी, नहीं बनाते, सब जीरो रहता, सारी बात खत्म हो जाती। अगर आपका छोटा सा बच्चा हो तो क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा हमेशा सोता रहे, है ना। सुबह होगी तो माँ बाप का मन करता है बच्चा उठे, चाहे शरारत ही करे लेकिन उठे, खेले, दौड़े, कुछ सामान भी तोड़े, चिंता नहीं है। अगर बच्चा सामान तोड़े तो ज्यादा चिंता होगी कि बच्चा लेटा रहे बिस्तर पे निढाल, ज्यादा चिंता होगी। माँ बाप ज्यादा चिंता कब करेंगे, जब वो उठ ही नहीं रहा बिस्तर से, उठो, बेसुध होके पड़ा हुआ है। तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता कि बेसुध होके पड़े रहे उनके बच्चे, भगवान उनको उठाते हैं। भगवान उठाते हैं, भगवान बोलते हैं कि ठीक है आप कुछ काम में लग जाओ, ठीक है। और भगवान मौका देते हैं कि आप ऐसी स्थिति प्राप्त कर लो कि आपको बार बार जगाना नहीं पड़े। और जो जगाने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं जन्म। जो भगवान जगाते हैं इसका मतलब भगवान हमें एक नए शरीर में डाल देते हैं, और जब भगवान सुलाते हैं मतलब मृत्यु, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। बार 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 भगवान एक माँ के गर्भ में शरण लेने पर, माँ के गर्भ में प्रवेश करने के लिए बाध्य कर देते हैं क्योंकि हम सुधर नहीं रहे। भगवान कह रहे हैं ठीक है आप शरारती बच्चे हो, फाइन, आप शरारत करते रहो, आप सोते रहो जागते रहो, लेकिन भगवान वास्तव में ये नहीं चाहते। भगवान ने शास्त्र दिए, भगवत गीता दी, भागवतम दी, भगवान ने इसलिए दी कि हम ये जान लें कि हम शरारती बच्चे हैं, ठीक है। भगवान ये बहुत भगवान धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम समझ लेंगे कि हम शरारती बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम समझते रहेंगे हम तो ठीक है, हम तो बहुत समझदार हैं, तब तक हम सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे। सुधरने का प्रयास करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, वो महत्वपूर्ण कारक ये है कि हमें जब तक ये महसूस नहीं होगा कि हमें सुधार की गुंजाइश है, जब तक हमें हम इस बात को नहीं अपने दिमाग में डाल लेंगे कि हमें सुधार की गुंजाइश है, हम कभी सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे। और अगर हम सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। अगर हम बार बार रूल्स तोड़ेंगे, तो अगर हम बार बार ट्रैफिक लाइट जंप करेंगे या चोरी डकैती करेंगे, एक दो बार वार्निंग देंगे, नहीं समझ में आएगी, उठा के जेल में डाल देंगे, है ना। तो इसी तरह से ये जो पूरा भौतिक संसार है ये एक जेल के समान है, और ये जेल में कोई भगवान ने हमें बहुत खुशी से नहीं डाला हुआ, हमें सुधारने के लिए, हमें सुधरने का मौका देने के लिए भगवान ने हमें इस जेल में डाला हुआ। हम इस जेल से बाहर निकल सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सुधर जाएं। सुधरने का मतलब यह है कि जो हमने कसम उठा रखी है कि नहीं भगवान की शरण लेंगे, उस कसम को हम तोड़ दें। और बहुत मुश्किल नहीं है इस कसम को तोड़ना। हम आज से ही अगर जप करना शुरू करें, हम आज से ही भगवान के नामों का उच्चारण करना शुरू करें, वो कसम अपने आप टूट जाएगी, है ना। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करें, अगर हम केवल भगवान के नामों का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ इन दिव्य नामों का जप करने मात्र से हम भगवान को ये सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो टावर से सिग्नल भेज रहे हैं हम गोलोक वृंदावन में कि हम सुधरना चाहते हैं। लेकिन गुणों का क्या, हमारे में अभी विनम्रता नहीं है, हमारे में ब्राह्मणों के गुण नहीं है, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। सब आ जाएगा, सब आ जाएगा समय के साथ साथ, सब आ जाएगा भगवत कृपा से। हर आपको सारे गुण आ जाएंगे। भागवतम में लिखा हुआ है कि जो लोग भगवान की भक्ति आरंभ करते हैं उनमें देवी देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। और अगर कृष्ण भक्ति नहीं की तो हम कितना ही प्रयास कर लें, कुछ भी सद्गुण नहीं होगा। अगर कुछ गुण हमारे में होगा वो अनर्थ का ही कारण बन जाएगा। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो वो क्या करता है, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है, नहीं? कभी महंगी से महंगी शराब पिएगा, महंगे से महंगे क्लब में जाएगा, हम बड़ा टीवी खरीद के लाएगा, छोटे टीवी में ठीक से नहीं दिख रहा, बड़े टीवी खरीद के लाता हूँ, और उस बड़े टीवी में वो रोज 10 घंटे तरह तरह की पिक्चरें देखेगा। तो इस भौतिक संसार में अगर किसी के पास कोई गुण भी है वो अवगुण ही बन जाएगा अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया। सो आप प्लीज आप सोचो बैठ के कि आप में क्या गुण है, आप में क्या क्वालिटी है। हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में भगवान ने अलग अलग गुण दे रखा है। भगवान ने एक छोटे से बीज में गुण दे रखा है कि वो मिट्टी में से रंग निकाल लेता है, है ना। हम नहीं निकाल सकते, लेकिन एक छोटा सा बीज, एक गुलाब का जो पौधा है उसमें भगवान ने शक्ति डाली हुई है कि वो लाल रंग मिट्टी में से निकालेगा। कहां से लेके आ रहा है लाल रंग, वो मिट्टी में से तो निकाल रहा है, क्या हम निकाल सकते हैं? हम नहीं निकाल सकते। कोई फूल है वो पीला रंग निकाल रहा है, कोई है सफेद रंग निकाल रहा है, कोई गुलाबी रंग निकाल रहा है, हम नहीं कर सकते। आप उसी छोटी सी जगह में अलग अलग पौधे लगा दो, वो अलग अलग रंग खींच के दिखा देंगे आपको। वो शक्ति भगवान ने प्रदान की है, अगर हम उस शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो शक्ति जो है वो हमें हानि का कारण बन जाएगी, है ना। हानिकारक बोलते हैं ना। तो अगर हम बहुत बलशाली हैं और अगर हमने उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो वो नुकसान का कारण बनेगी, लोगों से जबरदस्ती जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे। अगर हमारे पास धन है, हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो हम उसको गलत कामों में उसका प्रयोग करेंगे। अगर हमें बहुत अच्छा पकाना आता है भोजन, अगर हमें उसे भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो हम इंद्र तृप्ति के लिए पकाते रहेंगे। और भगवत गीता के 3rd अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पका रहा है वो सिर्फ पाप ही खा रहा है। और अगर हम पाप खाएंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आप पूरा संसार देख लो, कितना प्रयास कर रहे हैं हम सुखी रहने का, लेकिन उल्टा हो रहा है। वो उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने गुणों को, अपनी क्वालिटीज को, अपनी शक्ति को हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे। तो ये जो कार्यक्रम है, ये सब साप्ताहिक कार्यक्रम इस कौन जगह जगह आयोजित करता है, उन कार्यक्रमों का उद्देश्य है ये बताना कि हम अपने गुणों को, अपने विभिन्न क्वालिटीज को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं और अपना नुकसान करने से कैसे बच सकते हैं। सो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लें और भगवान के दिव्य नामों का जप करें और भगवद गीता यथारूप का आप नियमित पाठ करें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भगवान की सेवा करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो कैसे करनी है। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आप बोलो कि शुरू में बहुत गलतियां होंगी, आपकी शुरुआती सारी गलतियों को भगवान माफ कर देंगे। भगवान बोलेंगे कि आप ट्राई कर रहे हो, आपने शुरू किया, बहुत अच्छा है, आप करो। एक छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, वो जब चलने की कोशिश करता है वो बार बार नीचे गिरता है, माँ बाप को अच्छा लगता है कि देखो चलने की कोशिश करी, नीचे गिरा फिर खड़ा हो गया, माँ बाप कहते हो वेरी गुड। लेकिन अगर 20 साल का बच्चा बार बार नीचे गिरेगा तो माँ बाप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि जरा चेक करना क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं और हम गलतियां करते हैं, भगवान को अच्छा लगता है कि हाँ चलो ट्राई कर रहा है, चलो कुछ गलतियां हुई फाइन, आज गलती कर रहा है कल नहीं करेगा। लेकिन हम भक्ति में जुड़े रहे और बहुत समय तक प्रयास किया हमने, उसके बाद भी हम गलतियां किए जा रहे हैं, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता, है ना। एक बच्चे की गलती माफ कर देंगे, बड़े की गलतियां माफ नहीं करते भगवान। अगर हम भक्ति में जुड़ जाते हैं, अच्छे से भक्ति शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम गलतियां करते रहेंगे तो फिर भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारी चेतना ढक देते हैं कि फाइन अभी आप तैयार नहीं हो, आप थोड़ी देर और कष्ट भोगो इस संसार के, जब थप्पड़ खाओगे माया के धीरे धीरे आपके अकल ठिकाने आएगी, फिर आप भक्ति में जुड़ना। और वो समय हो सकता है कुछ सालों के बाद आए, हो सकता है वो समय कुछ जन्मों के बाद भी आए। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम भक्ति में जुड़े और अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करें, तभी ये कह पाएंगे कि हमने मनुष्य जीवन जो हमें मिला वो सफल हो गया। ये जो भौतिक सफलता है वो वास्तव में विफलता है, और भगवान की भक्ति में जुड़ना ही सही मायनों में सफलता है। हरे कृष्णा।